نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن سورتوں کا نظم جلی، اس میں سے ہم مختصر اصول تفسیر کر رہے ہیں. پیج نمبر 21 سے ہم ساتواں اصول کریں گے. اس سے پہلے ہم 6 اصول کر چکے، آج ساتواں ہے. دہرانا چاہتے ہیں پہلے 6 والے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، تفسیر قرآن حدیث کی روشنی میں، تفسیر قرآن صحابہ کی رائے میں، تابعین، لغت. چھٹا کیا تھا؟ لغت ہو گیا، لغت یعنی گرامر کی روشنی میں تو ہم نے کر لیا. پیچھے اس سے جو بالکل جی اجتہاد اور رائے سے، اس کی کافی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی ڈیفرنٹ اینگل سے. آج ہم کریں گے ساتواں اصول، اور وہ کیا ہے؟ سیاق و سباق کی روشنی میں. سیاق اور سباق کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کا ساتواں اہم اصول ہے کہ زیر بحث آیت سے پہلے کی آیات کو پیش نظر رکھا جائے. اسے سباق کہتے ہیں. سباق کیا ہوتا ہے؟ سبق سے، جو پیچھے گزر گیا. اور زیر بحث آیت کے بعد والی آیت کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اسے سیاق کہتے ہیں. پہلے والی آیت سباق، بعد والی سیاق، یہی نظم قرآن ہے. اسے ربط کلام بھی کہتے ہیں. اسے تناسب آیات کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہاں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانٹیکسٹ. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے، بات کا آگے اور پیچھے کا تعلق توڑ دیں تو بہت ساری باتیں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. ہم اپنی عام زندگی میں بھی اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں. کسی کی بھی کوئی بات سنیں جو اس نے آپ کے بارے میں کہی، تو چیک کیجئے کہ اس سے پیچھے کیا باتیں ہو رہی تھیں یا اس سے بعد کیا ہوا. تو کسی بھی بات کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو چند چیزیں اس میں دیکھیں گے. سیاق و سباق میں لفظ کا مخصوص مطلب، یعنی بات کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے اگر ہم اس لفظ کا معنی بدل دیں. ہر لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے. لغوی کیا؟ لغت، ڈکشنری سے. بعض اوقات ایک اصطلاحی اور شرعی مفہوم بھی ہوتا ہے. اصطلاحی کیا؟ ٹرمینالوجی، اسلامک ٹرمینالوجی. جی مثلا جیسے نماز ہے، تب دیکھیں نماز کا ڈکشنری میں معنی آپ دیکھیں گے تو جلانا ہے، عاجزی ہے. لیکن اسلام میں نماز کا لفظ کیا ہے؟ ایک خاص عبادت کا نام ہے، یہ مراد ہے. مثلا ہر کتاب رکھنے والے کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو تو آپ کے میں اہل کتاب ہو، کیونکہ اہل کتاب ایک خاص ٹرم ہے جو کہ اللہ نے یہود اور نصارہ کو دی ہے. بعض اوقات سیاق و سباق سے لفظ کا ایک نیا مخصوص مطلب سامنے آتا ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے. مثلا الحکمت کا معروف و مشہور مفہوم دانائی ہے. حکمت کا معنی تو دانائی ہے نا. لیکن سورۃ البقرہ کی آیت 261 سے 274 کا مطالعہ کیجئے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر 14 آیات ہیں. اس کے آخر میں فرمایا گیا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جو حکمت دیا گیا اس کو خیر کثیر دی گئی. یہاں عمومی مطلب کے علاوہ ایک خصوصی مطلب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے صحیح جگہ پہ دینا، یعنی کہاں دینے سے زیادہ فائدہ ہے. سلسلہ کلام اور سیاق و سباق کو پیش نظر رکھیے. تو الحکمہ کا خصوصی مطلب فیاضی، سخاوت اور دریا دلی معلوم ہوتا ہے. الفاظ کے بارے میں تین باتیں یاد رکھیے. نمبر ایک، ہر لفظ گونگا ہوتا ہے، بولتا تو نہیں ہے نا. لغت اور قاموس میں آ کر یہی لفظ تتلانے لگتا ہے، البتہ سیاق و سباق میں بولنے لگتا ہے اور اپنے صحیح مفہوم اور مدعا کو بے نقاب کرتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اگر ایک لفظ خالی اپنی جگہ کہیں لکھا ہو، کچھ بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، آگے بھی نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے. جب لغت اور ڈکشنری میں دیکھیں تو کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ نہیں. تو ایسے جیسے تھتھلانا. ہاں، کانٹیکسٹ سامنے آ جائے، سیاق و سباق آ جائے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ بات اس مفہوم میں کہی ہے. مجھے ایسے لگا جیسے چھوٹا بچہ بولنا سیکھتا ہے نا، دوسروں کو نہیں سمجھ آتا پر ماں کو سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سیاق و سباق جانتی ہے. جب یہ بات کرتا ہے تو اس سے پہلے کیا کہتا ہے، اس سے بعد کیا کرتا ہے، یا اس وقت کیا ہو رہا تھا. چند مثالیں دیکھیں گے. نمبر ایک، متقین کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے. ہر جگہ اس کا ایک مخصوص مطلب ہوگا. مثلا سورۃ توبہ میں متقین کا لفظ عہد اور معاہدوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ خارجہ پالیسی کے متقی ہیں، یعنی غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یا ایک مسلمان مملکت کا اپنے باہر والے ملکوں سے کیسا رابطہ ہونا چاہیے. سورۃ توبہ کی 4 اور 7 میں یہ مفہوم آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سورۃ قصص میں یہ لفظ حدود و قیود میں رہ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ये अस्करी कुव्वत, अस्करी क्या होती है? असलहे वाली, हथियारों वाली, फौजी कुव्वत रखने वाले साहिब इक्तदार मुक्तदी हैं। सुरक़ा से साइड 33 है। तो तकवा का मफहूम हर जगह फर्क हुआ ना। सूरत नबा में मुत्तकीन का लफ्ज़ एहसासे क़यामत और एहसासे जज़ा और सज़ा के साथ जिंदगी गुजारने वालों के लिए तौगीन के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है। सूरत नबा आयत 31। बात समझ गए? हम मुत्तकी का एक मानी कर देते हैं परहेजगार, पर नहीं, मुत्तकी मुआहदों से पैरवी करने वाला। अब ये कैसे पता चल रहा है कि सूरत तौबा की आयत 4 और 7 में ये मुआहदों और अहदों की पाबंदी वालों का नाम है और सूरत कसस 83 में ये फौजी ताकत का कॉन्टेक्ट है? उससे पीछे क्या बात चल रही है? ठीक है, इसकी एक छोटी सी मिसाल है। हुदल्लिल मुत्तकीन, क्या कहा कुरान में शुरू में सूरह बकरा में? जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल्लिल मुत्तकीन। जालिकल किताबु, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीन यूमिनून बिल। तो लफ्ज मुत्तकी के आगे पीछे देख लेंगे कि यहां मुत्तकी कौन है। बस यही बात इधर कही जा रही है, कॉन्टेक्स्ट को जानना लाजमी है। फिर इसी तरह तौगीन का लफ्ज इसी सूरत में एक मखसूस मतलब रखता है, वो लोग जो क्यामत के एहसास से बेनियाज होकर बेलगाम जिंदगी गुजारते हैं। तौगीन किसको कहते हैं? हदों से निकलने वाला, तगा, तुगयानी, तो आमतौर पे तो वही मानी है। लेकिन किस हद से गुजरना? क्यामत के एहसास से बेनियाज होना, इसके लिए ये लफ्ज आता है। फिर इसी तरह देखिए मुसरिफीन का लफ्ज जायज मामलात में जरूरत से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक मखसूस मतलब भी है। सूरत अलनाम आयत 141 में मुसरिफीन का यही लफ्ज फिरौन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। फिरौन अपने इकतदार इख्तियार में इसराफ के जुर्म का मुर्तकिब था, सूरह यूनुस आयत 83 में। तो बात वाज़े हुई। एक बहुत अहम चीज तफसीर के दौरान क्या है? सियाको सबाक। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात झगड़ा करवा देती है, लड़ाई डलवा देती है। तो कुरान की आयतों की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें या उनको कोट करना आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है। नॉन मुस्लिम्स भी कोट करते हैं और एक फिरके वाले दूसरे फिरके के खिलाफ या अपने मसले को सच्चा करने के लिए भी ऐसी बातें पेश करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं। इसकी एक मुझे मिसाल याद आ रही है सूरत निसा में, कुफ्फु अयदियकुम। मक्की दौर में मुसलमानों पे जब जुल्म सितम होता था तो बार बार आके पूछते थे अल्लाह के नबी हम इनको जवाब दें, लेकिन आपकी सुन्नती की तैयारी के बगैर काम नहीं करते थे। तो आपने कहा कुफ्फु अयदियकुम, हाथ रोको। अभी कुरान में आज भी मौजूद आयत, लेकिन लोग इस आयत को कहते हैं नमाज में रफुल यदैन अल्लाह अकबर ना करने की दलील है कि हाथ रोको, ना उसके आगे नमाज का जिक्र ना उसके पीछे नमाज का जिक्र। अब कोई उस आयत का नंबर लिख ले किसी की नमाज की किताब में कि देखो रफुल दैन नहीं करना चाहिए कुरान की सूरह निसा की आयत में, मेरे आप जैसा आम बंदा क्या कहेगा? ठीक है, आलिम ने लिखी है, मुफ्ती ने लिखी है, पर उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की क्या तफसीर की, सहाबा ने क्या समझा, ये नहीं होगा। तो इसी से फिर आप देखिए कि आज ये जो हर बंदा कुरान से ही अपने दलाइल लाता है ना, उसकी वजह ये है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें बहुत बड़ा फितना पैदा करती हैं। फिर इसके बाद देखिए कुरान फहमी के दो तरीके। अब यहां से 8वां असूल है जो कुरान को समझने के लिए मजीद हमारे लिए फायदेमंद है। नंबर एक, नजूली तरतीब के मुताबिक कुरान को समझना, यानी कौन सी आयत पहले नाजिल हुई, कौन सी बाद में नाजिल हुई। कुरान मजीद की तफसीर का 8वां असूल ये है कि कुरान मजीद को इसकी नजूली तरतीब के मुताबिक समझा जाए और सूरतों और आयतों के शान नजूल को समझने की भरपूर कोशिश की जाए। कुरान फहमी के दो तरीके हैं, नजूली तरतीब के मुताबिक कुरान को समझना और किताबी तरतीब के मुताबिक कुरान को समझना। नजूली कौन सी थी? जिस पे उतरा था। किताबी कौन सी है? जो आज हमें मुसहफ में दिखती है। शान नजूल को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर महारत जरूरी है। मक्की दौर के मुस्तनद वाक्यात और मदनी दौर के मुस्तनद वाक्यात मालूम होना चाहिए कि दुनिया में पहले कुरान नहीं आया बल्कि पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और 40 साल की उम्र में आप पर कुरान मजीद के बतदरीज नजूल का आगाज हुआ। कुरान सीरत नबी के साथ साथ चलता है। जो नादान सीरत नबी के बगैर कुरान को समझने की कोशिश करेगा वो ठोकर खाएगा और ना सिर्फ खुद गुमराह होगा बल्कि दूसरों को भी गुमराह करेगा। मुनकरीन हदीस का यही मामला है। सूरतों और आयतों के नजूल के बारे में वारिद सही और मुस्तनद रिवायात को पेश नजर रखने से कुरान फहमी की मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो कुरान फहमी में पहली बात क्या समझ आई, तरतीब नजूली को समझना लाजमी है। इसीलिए जब तफसीर होती है या जब कोई नई सूरत शुरू होती है तो आपको बताया जाता है कि यह सूरत मक्की दौर में आई, ये सूरत मदनी दौर में, क्योंकि उस दौर के हालात को सामने रख के उसको समझना आसान होगा। फिर दूसरी चीज है मक्की और मदनी सूरतें। तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो पहले मक्की सूरतों की तरतीब को समझे और फिर मदनी सूरतों की तरतीब को समझे। मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। कतई नजर इससे कि वो कहाँ नाजिल हुई, बात समझ गए। शुरू से हम लोग क्या कहते हैं, जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई वो मक्की हैं, जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी है। ये दुरुस्त जवाब नहीं है, क्योंकि मक्का में जो आप थे तो सारी सूरतें मक्का में तो नहीं नाजिल हुई। आप देखिए कि कुछ आयतें जो हैं वो ताइफ में जाकर नाजिल हुई, फिर इसी तरह से जैसे हज के मौके पे अरफात के मैदान में जाकर कुछ आयतों को हम देखते हैं, इसी तरह मदीना में जो आयतें थी वो सारी मदीना में तो नहीं नाजिल हुई थी। कभी अल्लाह के नबी मक्का में होते तो आप पे वही का सिलसिला शुरू होता। तो बस ये कहना दुरुस्त है कि हिजरत मदीना से पहले मक्की और हिजरत मदीना के बाद मदनी सूरतें नाजिल हुई। सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत अन-नसर है, जो हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में मीना के मुकाम पर नाजिल हुई, लेकिन ये इस्तलाहन मदनी कहलाती है। बात समझ गए, सूरत कब नाजिल हुई, हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में मीना में नाजिल हुई। अब मीना में नाजिल हुई तो इसको कौन सी सूरत कहना चाहिए, मीनाई सूरत नहीं, मदनी सूरत। यहाँ एक अहम नुक्ते की वजाहत जरूरी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब एक रिवायत इब्ने जरीस की है। ये रिवायत मुनक़ते है, इस पर हरगिज़ एतमाद नहीं किया जा सकता। इमाम सयूती ने भी जो तरतीब बयान की है वो भी इस्नादी एतबार से महल्ले नजर है, यानी उस पर सेकेंड थाट डालने की जरूरत है। फिर मक्की सूरतें 90 हैं। अब यहाँ पर बहुत दिलचस्प कवायफ यानी अदादो शुमार आपके सामने आने वाले हैं। पहली बात देखिए कि मक्की सूरतें 90 हैं, ये याद कीजिए फिगर, को इतना मुश्किल नहीं है याद करना। और मदनी सूरतें 24 हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि सूरत रात, सूरत रहमान, सूरत दहर और सूरत जिलजाल मदनी हैं, लेकिन सही बात यह कि ये चारों मक्की हैं। मक्की और मदनी सूरतों को जमानी एतबार के लिहाज से इब्तदाई, वसती और आखिरी दौर की सूरतों में मजीद तकसीम किया जा सकता है। बात समझ गए, यानी एक तरतीब क्या है, मक्की और मदनी। अब मक्की क्या है, मक्का का इब्तदाई दौर, मक्का का दरमियाना दौर, मक्का का आखिरी दौर। इसी तरह से मदनी सूरतें फिर तीन किस्म की हो गई, मदीना के इब्तदाई दौर की, मदीना के दरमियानी दौर की, मदीना के आखिरी दौर की। क्लियर हो रही है। मसलन देखिएगा, नुज़ूले तरतीब को समझने के लिए चंद अहम वाक़ियात सीरत और इनकी तारीखें। मक्की दौर की सूरतों की नुज़ूली तरतीब को समझना बहुत मुश्किल है, इसमें हमें खारजी शवाहिद से भी काम लेना पड़ता है। खारजी क्या होते हैं, बाहर से, बैरूनी, आउटसाइड, शवाहिद मीन गवाहियां, और दाखिली शवाहिद से भी, दाखिली के घर की अंदर की। खारजी शवाहिद की दो किस्में हैं, सुनिएगा गौर से। पहली किस्म वो है जो सही सनद के साथ साबित है, दूसरी वो जिनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। सूरत के अंदर का मवाद खुद रहनुमाई करता है कि ये सूरत किस दौर में नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को चार बड़े अदवार में तकसीम किया गया है, इनमें कुल 90 सूरतें नाजिल हुई। तफसील ये, अब आप देखिए आपके लिए कितना दिलचस्प है ये मजमून जो कुरान सीखते हैं, कि मक्की सूरतें टोटल कितनी है, 90। उन 90 को चार हिस्सों में तकसीम करेंगे, कुछ शुरू में, कुछ दरमियान में, कुछ तीसरे दौर में और कुछ चौथे दौर में। इनका ब्रेकडाउन देखिए, पहला दौर कब से कब तक, आगाज नबूवत से 3 नबी तक, 3 साल हुए। जहन में रखिए, नबी सल्लम को मक्का में दीन का काम करते हुए 3 साल गुजरे, कितनी सूरतें नाजिल हुई इस दौरान, 13। आगे हम इसकी तफसील भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर दूसरा दौर था 4 से 5 नबी, यानी 2 साल का, 42, 42 सूरतें नाजिल हुई। छोटी छोटी सूरतें थी, ज्यादा लग रही हैं 2 साल में। तीसरा दौर 6 से 10 नबी तक, 5 साल का है, 22, 22 सूरतें नाजिल हुई। चौथा दौर 11 नबी से हिजरते मदीना तक, 3 साल का है, 13 सूरतें नाजिल हुई। कुल 13 साल में 90 90 सूरतें नाजिल हुई। इंटरेस्टिंग है। अब दिल में सवाल आना चाहिए भाई, पहले दौर के 3 सालों में कौन सी 13 सूरतें नाजिल हुई? है दिलचस्पी की बात। तो ये देखिए, नंबर एक, इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतें। सबसे पहले ऑफ कोर्स पहली वही, सूरत अलक की इब्तदाई 5 आयात से वही का आगाज हुआ। ये रमजान बमुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी का वाकया है। इब्तदाई 3 साल के पहले दौर में गालिबन कुल 13 सूरतें नाजिल हुई, जिनकी तफसील हसबे ज़ैल है। याद करेंगे, सूरत अलक वही का आगाज इब्तदाई 5 आयतों से हुआ। सूरत मुद्दसर इब्तदाई 5 आयात नाजिल हुई। सूरत मुजम्मिल इब्तदाई 8 आयात नाजिल हुई। सूरत फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई। और सूरत दोहा फतरतुल वही के बाद तसल्ली के लिए नाजिल हुई। क्या मा वद्दा का रब्बू का व मा कला। ये तो तरतीब नजूल में है ना, आप कह सकते हैं ना, तरतीब नजूल में सबसे पहले अलक, फिर मुद्दसर, फिर मुजम्मिल, फिर फातिहा और फिर सूरत दोहा। लेकिन किताबी तरतीब क्या है? नहीं, ये जो सूरतें ये किस नंबर पे आती हैं? जी, आपके सामने लिखा हुआ है, सूरत अलक 96 नंबर है, सूरत मुद्दसिर 74, मुजम्मिल 73, फातिहा नंबर 1 और दोहा 93 सूरत है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए, सूरत अलम नशरफ फतरतुल वही के बाद तसल्ली के लिए नाजिल हुई। सूरत तकवीर मनाजिर व अहवाले क़यामत से आगाह किया गया। अल इन्फितार मनाजिर व अहवाले क़यामत से आगाह किया गया। अल क़द्र वही की कदर व कीमत बताई गई। अज़्ज़िलज़ाल मनाजिर व अहवाले क़यामत से आगाह किया गया। अल आदियात मनाजिर व अहवाले क़यामत से आगाह किया गया। अल क़ारिया मनाजिर व अहवाले क़यामत से आगाह किया गया। सूरतुल असर खसारे से बचने का नुस्खा। ये हैं 13 सूरतें जो इब्तदाई 3 सालों में नाजिल हुई। नंबर इनके लिखे हुए, अलम नशरख इस वक्त 94 नंबर की है, तकवीर 81 है, इन्फितार 82, सूरत कदर 97, जिलजाल 99, अलादियात नंबर 100, अलकारिया 101 और अल असर 103। अच्छा, आप सोच रहे होंगे किससे क्या फायदा हो रहा है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ इसका कोई फायदा हो रहा है? देखिए, जो हालात थे शुरू के 3 साल के, उसको जहन में लाएं। अजनबी नाम, नया चेहरा, इस शहर में एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया है, सब लोग बाप दादा के नाम पे कट मर रहे हैं। तो आप आज अपनी जिंदगी में जब उस दौर से गुजरेंगे ना, मैं आपको ये कह सकती हूँ, अगर बात आपको मैं समझा पाऊँ, आप जब भी अपनी जिंदगी में कहीं भी दीन के बिल्कुल इब्तदा में होना, आप इन आयतों को पढ़ें, इसमें से अपने लिए अमल की बातें लें। गाइडलाइन है हर उस सिस्टर और ब्रदर के लिए जो नया नया दीन में आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल उसको उन्हीं हालात से दो चार होना पड़ेगा जिनसे नबी सल्लम हुए। अच्छा, आप कहते हैं फिर इसका तावीज़ ना बना दे, वजीफा बना लेते हैं, दैने दीन में आने वाले इन 13 सूरतों का विर्द करें। ये मसला है हमारा, हमने दीन को खेल बना दिया। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। और आप देखिए जरा, इन सारी सूरतों में अगर आप इस एंगल से भी देखिए, कोई मसाइल वाली सूरतें हैं, फिकी इख्तलाफात वाली सूरतें हैं, ये सारी सूरतें इकट्ठी करके देख लीजिए, इसमें सिर्फ मोटिवेशन, तौहीद, दीन के रास्ते में साबित कदमी है, और आप पढ़ रहे हैं तसल्लियां हैं, क्यामत, आखरत, वही की कीमत, खसारे से बचने का रास्ता। तो आपके मेरे लिए इसमें अमल है। नए नए लोगों को मसलों में ना उलझाएं। जैसे वो सिस्टर कह रही थी कि उन्होंने कोई बात कही, तो उन्होंने कहा बहिश्ती जेवर में तो ये लिखा हुआ है, ऐसे मसले छेड़ा ही ना करें कि जिससे अगला जवाब दे। आप ये 13 सूरतें, 13 मजमून, 13 टॉपिक लेके पढ़ें। और मैं इसको इस एंगल से सोच रही हूँ कि 3 साल में नबी सल्लम ने ये 13 सूरतों का कोर्स कराया। हम 3 साल में पूरा कुरान कर जाते हैं माशाल्लाह, लेकिन अमल हमारा बदल जाए तो बड़ी बात है। तो ये चीज़ आपके मेरे लिए फ़ायदे की है। तो ये कौन से थे? पहली सूरतें। अब दूसरा देखिए, ऐलान आम के बाद नाजिल होने वाली सूरतें, यानी शुरू के 3 साल में ऐलान आम नहीं था, इतनी शोहरत नहीं मिली, इस्लाम इतना फेमस रिलीजन नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर लिस्ट पे लगाया नहीं जाता था कि 10 सबसे ज्यादा इनके लाइक्स हैं और इनका दीन में नाम है, नहीं। आम से एक शख्स के तौर पर आप उभरे थे, लेकिन जब अल्लाह ने बंदे से काम लेना होता है, उसमें खूबी होती है और अल्लाह की मदद होती है, तो अल्लाह बात को फैलाता है। दूसरा दौर कब शुरू हुआ? सन 4 से, और 2 साल तक रहा। यही पढ़ा ना पीछे आपने, जो बातें कही होती है ना, उसको फौरन जहन में ले आया करें कि अच्छा, अभी हम पढ़ के क्या आए हैं, तो दूसरा दौर 4 से 5 नबी तक का था, 42 सूरतें हैं, लिस्ट आपके सामने रखी हुई। और आप जरा यहां से भी देखिए तरतीब क्या बताती है, कौन सी दूसरे दौर में गालिबन कुल 42 सूरतें नाजिल हुई। ऐलान के बाद 23, हिजरत हबशा से पहले 7 और हिजरत हबशा के बाद 12 सूरतें नाजिल हुई। तफसील जाए यानी ये दूसरे दौर के फिर 3 हिस्से हैं, बात समझ गए, हिजरत हबशा से पहले, उसके बाद और ऐलान के बाद। ठीक है, ओपनली जब आपने अनाउंस किया अपनी नबूवत को, ऐलान आम 4 नबवी ब मुताबिक 613 ईस्वी में हुआ। पहली वही किस दिन आई थी, अभी ऊपर पढ़ के आए आप, 600 क्या लिखे आगे देखे, 610। ठीक है, तो ये चौथा साल शुरू हो चुका है। अब इस दौर की सूरतों को देखें, तरतीब के साथ जो नाम है वो आपको राइट साइड पे दिख रहे हैं। सूरत अखलास तौहीद ज़ात के ऐलान का हुक्म दिया, सूरत तीन दौरे तकजीब में नाजिल हुई, सूरत अर्रहमान दौरे तकजीब में नाजिल हुई, सूरत मुरसलात दौरे तकजीब में, अल-क़ियामा मुनकिर आखरत क़ियादत की पैरवी से बचने का हुक्म, अद-दहर अस-सबील दिखा दिया, अन्ना शुक्री ना करो यानी इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, यानी अब हुज्जत तमाम हो रही है कि लोगों को कहा आपको रास्ता बता दिया, अब आप माने ना माने आपकी मर्जी। सूरत नबा मुत्तकीन और मुनकरीन आखरत यानी तौगीन का तकाबुल है, अन्नाजियात है खाशेन और मुनकरीन आखरत तौगीन का तकाबुल, अल मुत्तफफीन तोहीनो इस्तेहजा के माहौल में माली रवैयों पर गिरफ्त है, अल इंशिकाक तौहीन और इस्तेहजा के माहौल में नाजिल हुई, अबसा तौहीन और इस्तेहजा के माहौल में आदाब दावत की तरबियत है, सूरत अलाला दौरे तस्कीर में नाजिल हुई, गाशिया दौरे तस्कीर में नाजिल हुई, तकासुर कुरैशी की आदत की मादा परस्ती पर गिरफ्त है, अलहुमजा कुरैशी की आदत की बखीली और बद अखलाकी पर गिरफ्त है, अलफील कुरैशी की आदत को इंतबाह यानी वॉन किया गया कि अल्लाह काहवे की हिफाजत करेगा, और सूरत कुरैश कुरैशी की आदत को बैतुल्ला के रब की इबादत का हुक्म दिया गया, अलमाउन कुरैशी की आदत की तकजीब आखरत के असरात पर गिरफ्त है, अल कौसर कुरैशी की आदत की हलाकत की पेशगोई है, अल काफिरून कुरैशी की आदत से साफ साफ गुफ्तगु, सूरत लहब कुरैशी कायद और इसकी बीवी की हलाकत की पेशन गोई, और अलफलक तौहीद रबूबियत की दावत के ऐलान का हुक्म, और अन्नास तौहीद अलूहियत व मलूकियत की दावत के ऐलान का भी हुक्म है, बात समझ गए। तो दौरे तकजीब में सूरत अलक सूरत मुद्दसर और सूरत मुजम्मिल की बकी आयात भी नाजिल हुई, पीछे आपने इनका नाम पहले दौर में पढ़ा है ना, तो कुछ हिस्सा फिर इसमें आया। इसी तरह देखिए हिजरत हबशा से पहले नाजिल होने वाली सूरतें, इसके बाद दौरे मुखालफत शुरू होता है, इसमें शिद्दत बढ़ती जाती है जिसके नतीजे में हिजरत हबशा होती है। हिजरत हबशा से पहले मंदरजा जैल 7 सूरतें नाजिल हुई, अलनकबूत क्यों हिजरत हबशा की तरफ इशारा, अर रोम मुसलमानों को आजमाइशों के बाद कामयाबी की बिशारत मिलती है, सूरत लुकमान अकीदे में मुशरिक वालदैन की बात ना मानने का हुक्म, अज़ुमर हिजरत हबशा का इशारा, सूरत कहफ हबशा के ईसाइयों में अदाब तबलीग की तालीम, मरियम ईसाइयों में तौहीद की दावत तसलीस की तरदीद, तौहा ईसाइयों में तौहीद की दावत। आप देख रहे हैं हर सूरत के पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और आप साथ साथ देख भी रहे हैं राइट साइड पे कि तरतीब किताब में इनकी क्या जगह है। तो गोया के पहली हिजरत हबशा रजब 5 नबवी ब मुताबिक 614 ईस्वी में हुई, 12 नौ मुस्लिम यानी न्यू मुस्लिम मर्दों और 4 औरतों का हजरत उस्मान की क्यादत में हबशा की तरफ सफर हुआ। दूसरी हिजरत हबशा 82 यानी 82 मर्दों और 18 औरतों पर मुश्तमिल 100 अफराद ने हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत हबशा के बाद गालिबन मंदरजा ज़ैल 12 सूरतें नाजिल हुई। यह दौर नबी सल्लम पर बेसरोपा, बेसरोपा किसको कहते हैं, ना जिनका सर और ना उनके पांव, इल्जामात का दौर था और तकजीब का, और तकजीब से मुराद रसूलुल्लाह और आपकी दावत को झुठलाना है। ये कौन सी सूरतें थी जो हिजरत हबशा के बाद उतरी, और आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको रोना आएगा, इतनी ज्यादा इसमें तकजीब है अल्लाह के नबी की। सूरत सजदा रसूलुल्लाह पर मुफ्तरी होने का इल्जाम, मुफ्तरी क्या कि नऊज़ बिल्लाह आप अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं और खुद ही नबी बन गए। सूरत वाकिया दौरे तकजीब में नाजिल हुई, सूरत कौफ दौरे तकजीब में तस्कीर का हुक्म है, अज़ारियात रसूलुल्लाह पर साहिर व मजनून होने का इल्जाम है। अतूर, रसूलुल्लाह पर शायर मजनून काहिन और मकतूल होने का इल्जाम। सूरत मुल्क, रसूलुल्लाह पर गुमराह हो जाने का इल्जाम। सूरत कलम, रसूलुल्लाह पर मजनून और मफतून होने का इल्जाम है। अल हाका, नबी सल्लम पर काहिन शायर और मकतूल होने का इल्जाम। अल मारिज, जर परस्त यानी माल से या सोने से मोहब्बत करने वाले कुरैशी क़ियादत को हलाकत की धमकी है। नूह, आदाब दावत और कौम नूह की तरह हलाकत की धमकी है। सूरत शम्स दौर तकजीब में नाजिल हुई, तकजीब समूद से अंजार है। और सूरत लईल दौर तकजीब में नाजिल हुई। सूरत नजम की आखिरी आयात नाजिल हुई जबकि इब्तदाई आयात 12 नबवी में मेराज के मौके पर नाजिल हुई। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ नोट डाउन है। ये मत सोचिए कि ये बातें कोई तुक्के हैं, किसी ने इतनी मेहनत की है ना, उस वक्त कागज कलम दबाते नहीं थी। लेकिन इल्म का ये फायदा होता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को लेता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कुरान की हर सूरत एक ख़ास जगह पे, ख़ास माहौल में, ख़ास वक्त पर हुई। और ये सब कुछ करने पढ़ने का फायदा आपको मुझे क्या होना है बता दीजिए। शाबाश कि हमें लोगों से डील करना आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ दो अदवार पढ़े हैं, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ये अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इल्म के लिए फोकस्ड कर दे, खालिस कर दे। और अगर आप ये सब कुछ याद कर लें तो देखिए कुरान पानी की तरह आपकी जुबान पे होगा। जब से मुझे ये सूरतों का बैकग्राउंड इधर उधर पता चला है, मुझे खुद महसूस होता है कि तफसीर में एक जान आ गई। मैं कोई आयत कुरान की पढ़ती हूँ, अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से मेरे सामने उसका बक खुल जाता है। क्यों खुलता है? फिर ही तो बंदा बात वैसे करता है। मैंने देखा है लोग कुरान की तफसीरें कर रहे होते हैं, ऐसे यकीन करें तरोड़ मरोड़ के, जैसे पालक की गुच्छियों को लोग तोड़ते हैं, इस तरह की तफसीरें कराते हैं पढ़ाने वाले, क्योंकि उन बेचारों को नहीं पता। वल्ला ही ये कुरान का बैकग्राउंड, उसकी ये सारी चीज़ें सीखना तफसीर करने से पहले लाजिम है, सीखना चाहिए इन चीज़ों को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में फिर देखेंगे 6 से 10 नबवी में नाजिल होने वाली सूरतें। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته